आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने।
दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा अपने महावाक्यों में कहते हैं कि जो बच्चा अष्ट शक्तियों को धारण करेगा वो विजयमाला में आएगा। और हम देखते हैं कि रोज के जीवन में हमें इन शक्तियों की बहुत जरूरत पड़ती है। अभी अभी हमने मैगजीन में एक छोटी सी बात डाली थी, हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ी भी हो। एक बार एक महिला बस में सफर कर रही थी, उसकी गोद में छोटा बच्चा था, बच्चा रोने लगा। उसने बच्चे को चुप कराने की बहुत कोशिश की, कभी तो वो खड़ी होकर के उसको खिलाने लगी, कभी उसने उसके पास बैग में जो खिलौना पड़ा था वो निकाल करके बच्चे के आगे हिलाने लगी, फिर भी बच्चा चुप ही नहीं हुआ, रोता गया रोता गया। आखिर में महिला ने क्या किया, बच्चे को एक थप्पड़ मारा और बच्चा फिर और जोर से रोया। तो महिला को लगा ये तो ठीक नहीं हुआ, उसके बाद फिर उसको प्यार करने लगी, पुचकारने लगी। अब सवाल ये है कि महिला ने बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? आप कहेंगे बहन जी वो चुप नहीं हो रहा था इसलिए मारा। तो क्या थप्पड़ मारने से बच्चा चुप हुआ? जब अपन डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, दवाई खाते हैं, असर नहीं करती तो दवाई को बदल लेते हैं। उसने भी थप्पड़ मारा, असर तो हुआ नहीं बच्चे पे, तो क्यों मारा? वास्तव में थप्पड़ इसलिए मारा कि उसके अंदर जो धैर्य का और सहनशीलता का स्टॉक था वो खत्म हो गया था। जितनी देर वो स्टॉक रहा वो मीठा मीठा प्यारा प्यारा बोलती रही, और जैसे ही स्टॉक खत्म हुआ उसको क्रोध आ गया, फिर हिंसा भी हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना शांति का, सहनशीलता का और धैर्य का स्टॉक बढ़ाना चाहिए, ताकि सामने की परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन हमें गुस्सा भी ना आए और हमसे हिंसा भी ना हो। इसलिए बाबा ने हमें अष्ट शक्तियों का ज्ञान दिया। शक्तियां तो बहुत सारी लेकिन मुख्य आठ, अगर ये आठ हमारे अंदर आ जाएं तो बाकी सारी भी हमारे अंदर आ जाएंगी। अब जैसे हम शुरू में सहन शक्ति की बात करते हैं, कई भाई बहन हमसे पूछते हैं कि बहन जी हमने इतना सहन किया इतना सहन किया, आखिर सहन करने की भी कोई सीमा तो होती होगी ना, एक साल दो साल दस साल। आप ये बताइए आप सर्दी कब से सहन कर रहे हो? कितने साल हो गए? इस बार तो पंजाब में इतनी सर्दी पड़ी थी, आपने कभी कहा कि सर्दी की भी कोई सीमा होनी चाहिए? हर साल आ जाती है फिर सहन करो, हर साल आ जाती है फिर सहन करो। अच्छा गर्मी सहन करते कितने बरस हो गई? जितने बरस के आप हो, 35 साल के हो तो 35 गर्मियां सहन की, 50 के हो तो 50 सहन की। तो जैसे सर्दी सहन करनी पड़ती है, गर्मी सहन करनी पड़ती है, ऐसे ही बाकी बातें भी सहन करनी पड़ती। जैसे सर्दी गर्मी की सीमा नहीं, बातों की भी सीमा नहीं, जब तक जिएंगे गर्मी सर्दी आएगी, जब तक जिएंगे बातें आएंगी। हमारी सहनशीलता कम कब हो जाती है? जब हम आदमी के सामने होते। अच्छा आप ये बताओ मच्छर काट जाए अब क्या करते हो? चुपचाप सहन करते हो ना? आंधी आई, आंखों में जोर से धूल आ गई, क्या करते हो? चुपचाप सहन करते हो? आपने कपड़े धोके सुखाए, बरसात आ गई, सारी भीग गई। अगर कोई मनुष्य दो छींटे पानी के मार देता तो क्या करते? लंबा चौड़ा युद्ध हो जाता। और बरसात ने वो ऐसे भिगो दिए, बात मत पूछो, सहन किया ना। तो कितनी बातें हम सहन करते हैं चुपचाप बिना बोले, लेकिन जब मनुष्य सामने आता है तब हमारी सहनशीलता जवाब दे जाती है। अच्छा, हमको ज्यादा समय किसके साथ रहना है? मच्छर के साथ ज्यादा समय रहना है, जानवर के साथ ज्यादा समय रहना है, या मनुष्य के साथ ज्यादा समय रहना है? 24 घंटे मनुष्य के साथ रहना है। तो हमें मनुष्य को सहन करना सीख लेना चाहिए। उनको सहन करेंगे तभी जीतेंगे, और उनको सहन करेंगे तभी जिंदगी हसीन बनेगी। ये बात कौन कहता है कि कब तक सहन करूं? एक गरीब आदमी है, उसके पास केवल महीने की आमदनी 5,000 रुपया है। सुबह सुबह उसके बच्चे ने कहा, डैडी जूते टूट गए, नए जूते ला दो। उसका मन छोटा हो गया, अरे जूतों पे खर्च होगा। दोपहर में उसकी बीबी ने कहा, किसी के यहाँ शादी में जाना है, कोई गिफ्ट लेके जानी है। मन और छोटा हो गया, ये क्या करूं। और शाम को उसकी बुजुर्ग माँ बीमार हो गई, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो उसके मुख से निकला, कहाँ कहाँ खर्च करूं, कितने खर्चे हैं, मैं तो तंग आ गया खर्च करते करते। एक अमीर आदमी है, उसकी महीने की आमदनी 1,00,000 रुपया है। सुबह उसके बच्चे ने भी कहा, जूते ला दो। उसने बड़े आराम से ला दिए। बीबी ने कहा, मुझे गिफ्ट देनी है। उसने उसको 1,100 रुपए निकाल के दे दिए। शाम को माँ बीमार हो गई, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। ये अमीर आदमी के मुंह से तो नहीं निकला कि कहाँ कहाँ खर्च करूं। क्यों? क्योंकि उसके पास धन का स्टॉक है, इसलिए वो आराम से खर्च करता है। गरीब के पास धन का स्टॉक नहीं है, इसलिए उसको खर्च करने में तकलीफ होती है। तो जिसके पास सहनशीलता का स्टॉक होगा, वो कभी नहीं कहेगा कब तक सहन करूं, क्या क्या सहन करूं, कितना तो सहन कर लिया। और जिसका स्टॉक खत्म होगा, वो एक बात सहन करते ही पूछेगा, क्या क्या सहन करूं, कितना सहन करूं। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, अपनी शक्तियों का स्टॉक बढ़ाओ। स्टॉक कब बढ़ाया जाता है? जब समस्या सामने आ जाए उसके बाद हम स्टॉक बढ़ाने जाते हैं क्या? जैसे मान लीजिए किसी आदमी को डॉक्टर ने कहा, भी तेरा ऑपरेशन होने वाला है, 3,00,000 रुपए लगेंगे। तब वो कमाने जाएगा क्या? डॉक्टर साहब ठहर जाओ, जरा 3,00,000 रुपए कमा के ले आता हूँ, फिर ऑपरेशन कर देना। मकान खरीदना है, उसके लिए आपको 10,00,000 रुपए चाहिए। आप कहोगे क्या, ठहर जाओ जरा 10,00,000 कमा लूं, फिर मकान खरीदूंगा। शादी आ गई, आप कहते हो क्या, जरा 5,00,000 कमा लूं फिर शादी करूंगा। शादी के लिए, बीमारी के लिए, मकान के लिए आदमी कितने बरस पहले 2-2, 4-4, 20-20, 100-100 रुपया इकट्ठा करना शुरू करता है, तब जाके मौके पे उसका धन काम आता है। ऐसी जब परिस्थिति आ गई तब हम कहते हैं, ठहर जाओ जरा सहनशीलता का अभ्यास कर लो, बाबा जरा सहन शक्ति देना। तो कैसी मिलेगी? ये तो पहले से स्टॉक जमा करके रखना था। जब भी समय मिले तभी किसी ना किसी शक्ति को अपने अंदर भर लो, क्योंकि जीवन में हर घड़ी किसी ना किसी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। कभी सहन शक्ति की, कभी समाने की शक्ति की। समाने की शक्ति का अर्थ क्या है? जिस समय जिस चीज की जरूरत हो उसके बारे में सोचो और बाकी बातों को एक तरफ कर दो। जिस बात की हमें जरूरत नहीं, जो बात हमें काम नहीं आ रही, जो बात का हमसे कोई सीधा कनेक्शन नहीं, वो बात मेरे मन में क्यों घूम रही है, मान लीजिए पड़ोसी के घर में झगड़ा हो गया, हमने खड़े होकर के सुना, उनका झगड़ा तो बंद हो गया लेकिन मेरे मन में तो उनका झगड़ा चालू है। पड़ोसन ने ये बोला, उसके पति ने ये बोला, उसकी सास ने ये बोला, क्यों भाई? वो तो झगड़ा खत्म करके चैन से सो गए और तुमको उस पे किताब लिखनी है क्या या फिल्म बनानी है उसके ऊपर या किसी अखबार में न्यूज डालनी है? क्यों मन में रिपीट कर रही हो उनकी बातों को? इसको कहते हैं समाने की शक्ति का अभाव। हमने बात सुन ली, हमारे कानों में चली गई लेकिन हमारे काम की तो नहीं है ना। एक तो पराई बात और दूसरी बेकार बात, तो उसको क्या करना है? फुल स्टॉप लगा दो, संभालो, खत्म कर दो। और समाने का एक अर्थ ये भी है कि कोई तीसरा आपसे आकर के पूछे कि आपने क्या सुना, तो हमको कहना है हमको तो याद ही नहीं है क्या सुना। इस पे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे सारी दुनिया का कीचड़ नदियों के द्वारा समुद्र में ला करके डाला जाता है, समुद्र क्या करता है उस कीचड़े को अंदर ले जाता है और ऊपर से अपने तल को स्वच्छ रखता है। अब कोई समुद्र से पूछे कि फलानी नदी ने कौन सा कीचड़ा लाया था, गंगा क्या लाई थी, यमुना क्या लाई थी, सागर कहेगा मेरे पास तो कीचड़ा है ही नहीं। और जब किसी को देगा तो स्वच्छ जल देगा, ये नहीं कि तुमने कीचड़ा दिया तो मैं भी कीचड़ा ही दूंगा, ना तो दिखाएगा और ना ही किसी को देगा। आया था समा गया। हमने भी इसकी उसकी बातें सुन ली, कान में पड़ गई, समाज में रहते हैं, लेकिन ना तो हमने उनका चिंतन किया और ना हमने किसी को वो बातें सुनाई। इसको कहते हैं समाने की शक्ति। दूसरा, समाने की शक्ति का अर्थ क्या है? जो काम अपने को एक महीने बाद करना है उसका चिंतन आज ना करें। आज कौन सा काम करेंगे? जो काम अभी जरूरी है, जैसे आप सुबह सुबह नाश्ता बनाते हो, नाश्ता बनाने में आप पराठा बना रहे थे, सब्जी बना रहे थे और भी सलाद काट रहे थे, इतनी देर में घर का एक मेंबर आया, उसने कहा ये लो मैं बैंगन लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया दोपहर में बना लेना। तो आप क्या करते हो? बैंगन की थैली पकड़ तो लेते हो लेकिन पकड़ के उसको फ्रिज में रख देते हो, ठीक है जब दोपहर का समय आएगा तब खोल के देखेंगे। अभी तो हम क्या कर रही हैं? नाश्ता बना रही हैं। ऐसे थोड़े है कि बैंगन आते ही आप उसे चिपट गए और नाश्ते को भूल गए। हर चीज का अपना अपना समय होता है, तो इसी तरह बातों का भी समय है, सोचने का भी समय। अगर आपको कल किसी की शादी में जाना है तो वो बात आप कल सोचना। आज आप भोजन बनाते बनाते उसका चिंतन क्यों कर रहे हो? आज आप सोते सोते उसका चिंतन क्यों कर रहे हो? वो तो कल का काम है ना, कल तक उसको समेट करके एक तरफ रख दो। जैसे आपने बैंगन रख दिए थे तभी तो आपका नाश्ते में ध्यान रहेगा, नहीं तो आप ना ठीक से नाश्ता बनाओगे ना भोजन ठीक से बनाओगे। तो कल की बात को कल सोचेंगे, परसों की बात को परसों सोचेंगे, महीने बाद वाली बात को महीने बाद सोचेंगे, आज की बात को आज सोचेंगे। इस समय मेरे लिए क्या जरूरी है, बाबा ने मुझे क्या कहा है, इसको भी कहते हैं समाने की शक्ति। और तीसरी बात, समाने की शक्ति का अर्थ है अगर हम किसी की गलत बात को देखते हैं तो हम उसे सकारात्मक रूप बना दें। जैसे मान लो घर में शोर हो रहा है, बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बॉल फेंक रही हैं, या रसोई में बर्तनों की आवाज हो रही है, आप सोचते हो घर में शांति नहीं है, ना तो मुरली पढ़ने देते हैं ना योग लगाने देते हैं, आप अपने इस विचार को बदलो। आप मन में ये सोचो कि जब हम मंदिर में पूजा करने जाते थे तो वहां भी तो कितनी घंटियां बजती थी, उस आवाज के बीच में भी तो हम भक्ति कर लेते थे। तो अगर रसोई में बर्तन कूड़ा कराई है तो इनको भी क्या समझ लो, ये भी घंटियां ही। तो नेगेटिव बात को पॉजिटिव बना करके मन को प्रसन्न रखो, ये भी समाने की शक्ति है और ये हमें बहुत काम आती है। उसके बाद परखने की शक्ति। अब कई भाई बहन कहते हैं हम कोई जवाहरी थोड़े हैं जो हमें परखना पड़े, लेकिन मनुष्य को भी तो परखना पड़ता है। मित्र है, दोस्त है, किसका संग करूं, किसको पार्टनर बनाऊं, ये भी तो परखना पड़ता है ना। बाबा ने एक मुरली में कहा था परखने की शक्ति कब आती है। बाबा ने कहा था जैसे जल जब स्थिर होता है और जब स्वच्छ होता है तो जल के अंदर पड़ी हुई चीजें साफ दिखाई देती हैं। ऐसे ही जब हमारा मन एक बाबा के ऊपर एकाग्र स्थिर होता है और जब हमारा मन स्वच्छ होता है, ना राग ना द्वेष ना किसी से दुश्मनी ना बैर ना किसी तरह की कोई चिंता ना तनाव, जब मन एकदम स्वच्छ होता है तो ठीक परखने की शक्ति आती है, क्या करूं और क्या नहीं करूं। और जिसमें परखने की शक्ति होगी वो कभी धोखा नहीं खाएगा, वो कभी अपना समय खराब नहीं करेगा, दुविधा में नहीं रहेगा। दुविधा क्या होती है? उधेड़ बुन, स्वेटर उधेड़ी और बुनी, उधेड़ी और बुनी कब पूरी होगी। ऐसे ही मनुष्य का मन भी उधेड़ बुन में रहता, करूं न करूं, करूं न करूं, ना तो उस काम से निवृत्त हो पाता है ना उसको कर पाता है। लेकिन जब परखने की शक्ति आती है, मन एकाग्र होता है, स्वच्छ होता है, तो हम एक सेकंड में परखते हैं और फिर एक सेकंड में डिसीजन लेते हैं और फिर है सामना करने की शक्ति। तो सामना करने की शक्ति भी कब आती है? बाबा ने एक मुरली में कहा था बच्चे कभी किसी मनुष्य का सामना नहीं करना। सामना करना माना उसके सामने साहस से खड़े हो जाना। तो किसी व्यक्ति का सामना नहीं करना लेकिन परिस्थिति का सामना करना। हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, सब मनुष्य हमारे मित्र हैं, सब बाबा के बच्चे। और नारी के लिए तो कहा जाता है नारी अर्थात न अरी, उसका कोई दुनिया में अरी है ही नहीं। तो सब भगवान के बच्चे भाई भाई हैं, तो फिर किसका सामना करना है? परिस्थिति का सामना करना है। सामना करने की शक्ति साहस बाबा हमको देता है। जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, ये एक परिस्थिति है, तो आप किसका सामना करेंगे? बच्चे का सामना करेंगे, बच्चे को पीटेंगे, बच्चे को डांट लगाएंगे। अरे छोटा सा बच्चा और आप इतने बड़े, आप उसका सामना क्यों कर रहे हो? परिस्थिति का सामना करो। वो स्कूल नहीं जा रहा, ये परिस्थिति है। आप कहेंगे परिस्थिति तो बच्चा ही लेके आया है, परिस्थिति को बच्चा लेके आया है, ये बात ठीक है, लेकिन परिस्थिति क्यों लेकर के आया? या तो स्कूल में उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं होता, या उसको पढ़ना बर्डन लगता है, या उसको घर में कोई आपका प्यार खींचता है, घर का आराम खींचता है, दोस्त खींचते हैं। आप पूरी परिस्थिति की जांच करो, परख करो। एक दिन उसको प्यार से घर में बिठा करके देखो क्या करता है, इसकी रुचि कहाँ है, या उसको स्कूल जाने के लिए कोई उसकी रुचि के अनुसार आकर्षण दो। लेकिन बच्चे का सामना क्यों कर रहे हो? उसको मारना, पीटना, भला बुरा कहना, जबरदस्ती बस में धकेलना, वो फिर स्कूल में भी रोएगा, वापस आके भी रोएगा, खाना भी नहीं खाएगा। तो कोई भी परिस्थिति हो, बीमारी आ गई ये भी परिस्थिति है, तो क्या करेंगे? बीमारी का सामना करेंगे। कैसे सामना करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे बीमारी आई है, जो चीज आती है वो सदा नहीं बैठती, चली जाती है। बीमारी तो सबको आती है, जिसके साथ शरीर है उसको बीमारी भी आएगी। अच्छा है आपको आराम से भगवान को याद करने का समय मिला है, भागदौड़ में मिलता नहीं था। तो बीमारी का सामना करो अपनी आंतरिक शक्ति से, ज्ञान से, योग के बल से। घर में चोर घुसाया, क्या करोगे? चोर पे गुस्सा करोगे वो गोली मार देगा, भला बुरा कहोगे उसको तो अपनी जान की परवाह है नहीं, वो हमारी भी जान ले लेगा। तो उस समय क्या करें, सामना करने के लिए कौन सी शक्ति यूज करें? धैर्य की युक्ति अपनाएं, मन को कूल रखें ताकि ठीक डिसीजन आए। और चोर या तो धन ले जाएगा या घर के लोगों को मारेगा, तो हमें ज्यादा प्रिय क्या है? जान ज्यादा प्रिय है। अगर धन और जान दोनों में से एक चीज को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? जान को चुनेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को हर परिस्थिति का सामना करने की विधि बताई है। शक्तियां तो बहुत सारी, लेकिन बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि अमृत वेले बाबा के सामने बैठो और बाबा सर्वशक्तिवान है, अलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा के स्टोक में सब प्रकार की शक्तियां भी हैं, गुण भी हैं, ज्ञान भी हैं, लेकिन उनको लेने के लिए अमृत वेले हमको क्या करना पड़े? उसी ज्ञान और गुण का संकल्प करना पड़े। जैसे आजकल हमारे पास मशीनें होती हैं, एक ही मशीन में कई प्रकार का पानी है, ठंडा, गर्म, नॉर्मल। अब ठंडे वाला बटन दबाएंगे गिलास में ठंडा पानी आएगा, नॉर्मल वाला दबाएंगे नॉर्मल आएगा, गर्म वाला दबाएंगे गर्म आएगा। इसी तरह बाबा के स्टोक में भी सारी शक्तियां हैं, सहन करने की, समाने की, सामना करने की, परखने की। आप जो संकल्प करेंगे वही शक्ति की किरणें आत्मा में प्रवेश होने लगेंगी। तो अमृत वेले हमको सर्वशक्तिवान के सामने बैठ जाना है और संकल्प करना है कि बाबा मुझे सहन शक्ति आपसे लेनी है, मैं आपका वारिस बच्चा हूँ, उत्तराधिकारी बच्चा हूँ। ये नहीं कहना दे दो बाबा, सहन शक्ति दे दो, दे दो नहीं कहना। अब जैसे ये गिलास पड़ा हुआ है और मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी रहूं, कोई मुझे गिलास दे दे, गिलास दे दे, तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी, मुझे गिलास उठाना पड़ेगा। किसी ने मेरा हाथ थोड़ी पकड़ रखा, मुझे लेना है। तो बाबा कहता है मैंने ताले में थोड़ी बंद कर रखी है शक्तियां, जो मुझे कहते हो कि दे दो भाई मैं ताला खोलूंगा और उसके बाद दूंगा। मैंने तो ताला खोल के आपके सामने शक्तियां रख रखी, सर्वशक्तिमान आपके सामने, और उसमें सर्वशक्तियां, सर्व ज्ञान, गुण सब है। तो आपको क्या करना है? एक तो आपको उस शक्ति के स्रोत के नजदीक बैठना है और दूसरा जो शक्ति चाहिए वो बटन दबाना, अर्थात संकल्प करना है। भौतिक जगत में चीजें मिलती हैं बटन दबाने से और आध्यात्मिक जगत में चीजें मिलती हैं संकल्प करने से। तो हम बाबा के सामने बैठ गए, बाबा के वारिस बच्चे बन के, बालक सो मालिक बन के, और हमने संकल्प किया कि हमको सामना करने की शक्ति चाहिए। और फिर आप उस दृश्य को देखिए, बाबा सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, और उनसे सहन सामना करने की शक्ति की किरणें निकल निकल करके मुझ आत्मा में प्रवेश होती जा रही है। ये दृश्य देखिए, मैं बाबा के सम्मुख हूँ, बाबा से शक्ति की रेजिज निकली और मुझ आत्मा में प्रवेश होती जा रही है। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ, मुझ में समाने की शक्ति भरपूर होती जा रही है, मुझ आत्मा में बाप समान समाने की शक्ति आती जा रही है, मैं आत्मा सामना करने की शक्ति अपने में महसूस कर रही हूँ। प्यारे बाबा का सारा खजाना मुझ आत्मा के लिए खुला है, मैं आत्मा मन इच्छित फल प्राप्त कर रही हूँ, प्यारे बाबा से मुझे समाने की शक्ति का वरदान मिल रहा है, मैं आत्मा समाने की शक्ति में भरपूर हो गई हूँ। तो ये हमने दृश्य देखा, बाबा से शक्तियों की रेजी जाई और मुझ आत्मा में भरती गई, समाती गई और मैं आत्मा भरपूर होती गई, और शक्ति से भरपूर होकर के फिर हम साकार जगत में आ गए, साकार शरीर में आ गई। अब दिन भर में हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आई जिसमें हमको समाना है या सामना करना है, तो हमको झट क्या याद आएगा, आज तो बाबा ने अमृत वेले मुझे समाने की शक्ति से भरपूर किया था, मुझ में इतनी समाने की शक्ति मैंने महसूस की थी, जैसे बाबा सब बातें समा लेते हैं तो मैं आत्मा भी समाने की शक्ति में बाप समान महसूस कर रही थी। तो मैं तो समाने की शक्ति में भरपूर हूँ, वो शक्ति तो बाबा ने मुझे दी थी, वो तो मैंने अनुभव की थी, उसका अनुभव तो मैंने अभी याद किया और फिर हो गया, तो मैं आत्मा समाने की शक्ति से भरपूर हूँ, ये बात तो मैंने समा ली। अब ये बात दोबारा मुझे हलचल में ला ही नहीं सकती। तो जो सुबह आपने अनुभव किया वो सारा दिन आपको भरपूर रखेगा, आपको मदद करेगा और आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकत देगा। ये तो मेरी चीज है, मैंने बाबा से ली है, मैं इसमें फेल कैसे हो सकती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे ये वर्षे में दी, उत्तराधिकार में दी, मुझे मालिक बनाया, बाबा ने कहा तुम बालक सो मालिक हो, तो मैं मालिक हूँ और ये मेरी चीज। तो जैसे ही हमने ये संकल्प किया तो हमको शक्ति का अनुभव हो गया, इसलिए हमको शक्तियों का अनुभवी बनना है, हर एक शक्ति का परिवर्तन शक्ति, कोई बात में हमको परिवर्तन करना है, अचानक परिवर्तन की चुनौती आ गई, खुद को बदलना है, भाव को बदलना है, वाणी को बदलना है, संस्कार को बदलना हो, कई बार जगह भी बदलनी पड़ जाती। तो अगर मैंने बाबा से परिवर्तन शक्ति का वरदान लिया, मैं आत्मा अपना परिवर्तन कर सकती हूँ, मोल्ड हो सकती हूँ, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बदल सकती हूँ, मेरे में मोल्ड होने की शक्ति है, मैं मोल्ड हो सकती हूँ, इसलिए रियल गोल्ड हूँ। ये हमने अमृत वेले बाबा से वरदान लिया। तो दिन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जब हमको बदलना पड़ा, अब तक हम एक धर्रे पे चले आ रहे थे और अब बदलना पड़ा, तो हम परिवर्तन शक्ति को यूज करेंगे, संस्कार को बदलना पड़ा, स्वभाव को, स्वरूप को, तुमको याद आएगा बाबा ने मुझे परिवर्तन शक्ति दी, तो मैं आत्मा कभी भी कहीं भी कैसा भी परिवर्तन करने में सक्षम, समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, मैं मोल्ड हो सकती हूँ। तो अमृत वेले आज का जो वरदान था उसमें भी बाबा ने अमृत वेले की क्या महिमा है वो हमको सुनाई। तो अमृत वेले बाबा सर्व शक्तियों का वरदान बच्चों को देते हैं, और जो बच्चा इन सर्व शक्तियों को अपने में भरपूर करता है वो बच्चा सारा दिन में हर परिस्थिति में विजयी बनता है। तो बाबा ने कहा है कि हम बच्चे अगर शक्तियों का स्टॉक अपने अंदर जमा करें, जैसे ही खाली बैठे, घर में काम पूरा हो गया, दूसरा काम शुरू करने से पहले 5 मिनट बैठ गए, तो उस 5 मिनट में कोई न कोई शक्ति का आह्वान करो। ये सब शक्तियां, मोल्ड करना, स्मरण करना, भूलना, रोकना, चलाना, अपने को बदलना, अपने को परखना, अपने 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 स्वरूप में टिकना, ये सब हमारी शक्तियां हैं। संकल्पों को दिशा देना, संकल्पों को मोड़ना, एकदम बिंदु लगा देना, ये सब हमारी शक्तियां। तो एक एक शक्ति हम अपने में भरें तो कर्म क्षेत्र पर हम हर परिस्थिति में विजयी बनेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? विजयी बन। तो जो युद्ध के मैदान में जाता है ना, वो सारे शस्त्र अपने हाथ में लेके जाता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कर्म क्षेत्र पर ये शक्तियां ही आपके शस्त्र हैं, और ध्यान रखना कि एक शस्त्र की जरूरत हो तो दूसरा मत चला देना, और ऐसा भी मत करना कि जब परिस्थिति चली गई सब कुछ बिगाड़ के उसके बाद शस्त्र याद आया, अरे मैं ये चला लेती तो अच्छा था, मैं ये यूज कर लेती तो अच्छा था। तो बाबा ने कहा जैसे एक वॉरियर हर समय अपनी शक्तियों को अपडेट रखता है, ऐसे हमको भी कर्म क्षेत्र पर अपनी शक्तियों को अपडेट रखना है, रेडी रखना है और यूज करना है। ओम शांति।
Bye।